ओम शांति। आज की दिनचर्या शिव बाबा की याद से आरंभ की सबने। हाँ, सुबह उठकर किसको याद किया? पहली गुड मॉर्निंग किसको की? हाँ, शिव बाबा को। सुबह उठते हैं तो हम आपस में गुड मॉर्निंग करते हैं ना, तो अब हमारी सबसे पहली गुड मॉर्निंग शिव बाबा से, क्योंकि वो हमारा सर्व संबंधी है। माता पिता, बंधु, गुरु, सखा, स्वामी, शिक्षक, रक्षक, वो हमारा सब कुछ है। तो शिव बाबा की याद से दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो ऑटोमेटिक सारा दिन हमें बार बार याद आती रहती है, फिर मेहनत नहीं लगती। जैसे लौकिक में आप कहते हैं कि सुबह उठकर जिसका मुंह देखते हैं ऐसा दिन जाता है। मानते हैं ना ऐसा कई लोग, भई आज किसका मुंह देखा था। तो हम रोज सुबह उठकर मन की आंख से अपने प्यारे पिता को देखते हैं, जो सत्य है, कल्याणकारी है, परम पवित्र है। तो सत्यम शिवम सुंदरम पिता को देख के उसे याद कर फिर दिनचर्या शुरू करते हैं तो हमें सारा दिन सहज याद आती रहती, मेहनत नहीं लगती। जैसे आप जड़ों को पानी सींचते हैं तो ऑटोमेटिक सारे वृक्ष को, पत्ते पत्ते को वो पानी पहुंच जाता है। ऐसे दिनचर्या का शुरुआत मॉर्निंग है। सुबह सुबह आत्मा को ज्ञान और योग की खुराक दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिक हर कर्म में उसका प्रभाव पहुंच जाता है। इसलिए हमारी दिनचर्या में यहां पर हम खास, और जो भी फिर इस जीवन के लक्ष्य को अपना लेते हैं वो जहां भी होते हैं, मॉर्निंग 4 बजे से 8 बजे का जो समय है वो विशेष आत्म उन्नति का समय। वो समय वैसे भी हम सोने में, नहाने धोने में, तैयार होने में ही खर्च करते, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो वो समय हम खुद के लिए दे सकते। इसलिए सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, उस समय हम साइलेंस में रहें। बहुत आवश्यक बातें हो तो धीमी आवाज से करें, बाकी साइलेंस में रहें और मन ही मन चिंतन करें, श्रेष्ठ स्मृति में रहें। तो 4 से 5 बजे का समय विशेष योग अभ्यास का समय, फिर 5 से 6 हर एक स्नान आदि करके तैयार हो जाते हैं, फिर 6 से 6:30 या जितना भी आपको कोई ड्यूटी है तो ड्यूटी करें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, साइलेंस में घूमें, तो फिजिकल हेल्थ का भी वो अभ्यास हो जाता है। और फिर 6:30 से 7:30 का समय वो हमारा ज्ञान के क्लास का समय। हर केंद्र पर ज्ञान मुरली, उसको हम कहते हैं, वो ज्ञान मुरली का क्लास चलता है, जो आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए एक खुराक है। इसलिए ये पीरियड आवाज में आने का नहीं है, लेकिन शांति की स्थिति में रहते हुए हमें ज्ञान ग्रहण करना है, याद की शक्ति अपने में जमा करनी। बस फिर सारा दिन कितना भी हम कर्म क्षेत्र में जाएं, कारोबार करें, विभिन्न स्वभाव संस्कार वाली व्यक्तियों के साथ, विभिन्न परिस्थितियों के बीच, लेकिन वो ज्ञान और योग का जो मॉर्निंग में हमने खुद को खुराक दिया है, तो वो समझ और शक्ति हमें सारा दिन पार होने में मदद करती है। तो अब आप सभी यहां से अपने अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हमें योग से प्राप्त शक्तियों का ज्ञान अपने आप में लेना है कि राजयोग के अभ्यास से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। बल्कि एक ही वाक्य में कहेंगे कि हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे ही हम स्वचिंतन करते हैं, परमात्मा की याद में बैठते हैं, मन लगाते हैं, तो मन ऑटोमेटिक शांत बनने लगता है। मैं आत्मा हूं, केवल इतना सोचना ही मन को अंतर्मुखी बनाता है। जो मन बहिर्मुखी बन गया, देह संबंध संसारिक बातों में भटक गया है, उसको हम अंतर्मुखी बनाकर समेट सकते हैं और उससे हमारी अपनी शक्ति का हमें एहसास होता है। केवल स्वचिंतन भी हमें शक्ति का अनुभव कराता है, क्योंकि बिखरी हुई शक्ति फिर स्व में केंद्रित होती है तो भी हमें एम्पावरमेंट लगती। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं फिजिकली, तो हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, जबकि बाहर की कोई शक्ति अंदर नहीं आती, लेकिन बिखरे हुए कोष एक ही प्रकार की एक्सरसाइज करने से फिर निश्चित स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं, तो हमारे मसल्स मजबूत बन जाते हैं। इसी प्रकार स्वचिंतन का अभ्यास, स्व के प्रति विचारों को, भावनाओं को केंद्रित करता है, तो हमें अपने आप में अपनी स्थिति शक्तिशाली महसूस होती है। और परमात्मा से जब अपने आप को जोड़ते हैं, तो आत्मा ऐसे रिचार्ज होती है जैसे एक बैटरी को आप डायनेमो से कनेक्ट करते हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो ऐसे ही रख देने से वो अपने आप चार्ज नहीं हो जाती, लेकिन हम उसे डायनेमो से कनेक्ट करते, जनरेटर से जोड़ते हैं, आउटर फोर्स से कनेक्ट करते हैं, तब वो बैटरी फिर से चार्ज होने लगती है। तो इसी प्रकार आत्मा रूपी बैटरी जो है वो अब डिस्चार्ज हो गई है। अनेक जन्मों से शरीर धारण कर हम कर्म करते रहे हैं, हर कर्म में आत्मा की शक्ति खर्च होती है। आत्मा सोचती है, बोलती है, देखती है, सुनती है, हम जो भी शरीर द्वारा कर्म करते हैं, हर कर्म में शक्ति खर्च होती। तो धीरे धीरे, और जब नेगेटिव वेस्ट कर्म करते हैं, तो हमारा और पावर खर्च हो जाता है। इसलिए आज आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज है। इसलिए आप देखिए कि हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उसमें हार्मनी नहीं रही है। हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन प्रैक्टिस में बहुत कम आता है। हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो हमारी ये तीन आंतरिक शक्तियों में भी हार्मनी नहीं है। बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। संस्कारों के वश फिर गलत काम हम करते रहते हैं, इसलिए कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं, जो नहीं सोचना चाहते हैं वो विचार बार बार आते रहते हैं। तो ये क्या सिद्ध करता है कि हमारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं है? और इसलिए जब आत्मा कमजोर बन गई है, पतित बन गई है, तो बाह्य परिस्थितियों का भी आत्मा की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एक समय वो था, इसी देश के लोग अपने संकल्प से समाज को बदलते थे, अपने वाइब्रेशन से वायुमंडल को चेंज करते थे। वे परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते थे लेकिन अपनी पावर से परिस्थिति को बदलते थे। और आज हम हैं जो कहते हैं कि क्या करें, लोग ऐसे हैं, क्या करें, समय ऐसा है, इसलिए हमें भी ऐसा करना पड़ता है, समाज ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, बाती ऐसी हुई इसलिए ऐसा हो गए। तो आज हम हैं जो व्यक्तियों के, परिस्थिति के, प्रकृति के, बातों के, घटना के प्रभाव में हम आ जाते। ये है कि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उनकी निशानी। इसलिए कनेक्ट करने की जरूरत है। जो पावर हाउस है, लाइट हाउस है, जो स्पिरिचुअल जनरेटर है, उस ऑलमाइटी से मन को जोड़ना, जिसकी याद से ही हम देवता बने, जिसकी याद से कोई महात्मा बने, जिसकी याद से कोई धर्मात्मा बने। हमें उस बनाने वाले बीज से डायरेक्ट कनेक्ट होना। तो जब हम खुद को देह से अलग आत्मा निश्चय कर पिता परमात्मा से योग लगाते हैं, तो आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाती है। और आत्मा जब शक्तिशाली है, आत्मा में जब विल पावर है, पॉजिटिव एनर्जी जब फुल चार्ज हो जाती है, फिर यही जीवन हमें आसान लगता है। फिर कैसे भी वातावरण में, वायुमंडल में, संगठन के बीच हम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को न्यारा और प्यारा रख सकते हैं। तो वही आर्ट हमें सीखनी है। एक गृहस्थ में, प्रवृत्ति में रहने वाले व्यक्ति होने के नाते हमें वही आर्ट सीखनी चाहिए कि हम संसार में रहते हुए भी महान कैसे बने। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि राजयोग से कोई अल्पकाल की रिद्धि, सिद्धि, चमत्कार, जादू नहीं होते। ये अल्पकाल की रिद्धि, सिद्धि, चमत्कार मनुष्य गुरु भी करते हैं, परमात्मा वो कार्य नहीं करते हैं। जो छोटे जादूगर है वो छोटे छोटे जादू करते, परमात्मा महान जादूगर है। वो हमारे जीवन की कोई एक बात को नहीं बदलते कि भाई हम बीमार हो गए हैं तो हम ठीक हो जाएं, हमें नुकसान हुआ है तो नफा हो जाएं, हम नापास हो गए हैं तो पास हो जाएं। ऐसी अल्पकाल की प्राप्ति परमात्मा नहीं कराते। परमात्मा हमें पतित से पावन बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, और वो भी छु मंत्र से नहीं। परमात्मा अपनी शक्ति से हमें पावन कर दे, वो करेगा तो वो पाएगा ना। हमें पाना है तो हमें करना होगा ना। इसलिए वो कहते हैं कि मैं कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करता। उनकी कृपा तो है ही, उनके आशीर्वाद तो है ही, लेकिन वो जो सत्य ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, उससे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर हमें अपने आप पर कृपा करनी। उनकी याद से हमें अपने शक्ति स्वरूप को जागृत करना, न कि हमें उनसे शक्ति मांगनी है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। वो तो दाता दे ही रहा है, हमें लेना है। तो याद करेंगे तो प्राप्त करेंगे, उनसे प्यार करेंगे तो वो प्यार हम पाएंगे। इसलिए परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान देते, जिससे सही समझ मिलती है। वो हमें योग सिखाते हैं जिससे शक्ति प्राप्त होती है। उस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पवित्र और दिव्य बनना है। जैसे ये हाथ कमजोर हो तो मैं कुछ भी उठा नहीं सकूंगी, वो चीज गिर जाएंगी क्योंकि मेरा हाथ कमजोर है। अगर ये हाथ शक्तिशाली है तो मैं कोई भी चीज पकड़ सकती हूं ना। ऐसे आत्मा शक्तिशाली है तो जीवन में अच्छे विचारों की, गुणों की, कर्म की धारणा होगी। शक्ति नहीं है इसलिए समझते हैं, थोड़े समय के लिए धारण भी करते हैं, फिर वो गुण फिर छूट जाते हैं, फिर वो खराब आदतें आ जाती हैं, क्योंकि अंदर से आत्मा शक्तिशाली नहीं। तो राजयोग के अभ्यास से हमें सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति है, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। जीवन में कदम कदम पर हमें परखना होता है, व्यक्ति को, परिस्थिति को, बात को, कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये सही है या गलत है, ये झूठ है या सच है, ये वास्तविकता है या ये भ्रम है, इसमें प्राप्ति है या नुकसान है। हमें हर क्षण हर बात में परखना होता है, और वो सही परख नहीं सकते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं। हमारा टाइम, मनी, एनर्जी, लेबर वेस्ट होता है। इसलिए प्रैक्टिकल आपके अपने वर्क प्लेस में या अपने पारिवारिक जीवन में, समाज में, व्यक्तिगत जीवन में ये बहुत आवश्यक शक्ति है। तो राजयोग से हमें परखने की शक्ति प्राप्त होती है। कैसे? चित्र में बताया है कि एक हीरा पारखो हीरे को परख लेता है। देखने में सभी हीरे एक सरीखे दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं, लेकिन सच्चा है या नकली है, कौन सा कितना वैल्यूएबल है, वो एक हीरा पारखू परख लेता है, क्योंकि उसके पास हीरे की पूरी नॉलेज है, परखने की प्रैक्टिस है, उनके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए वो परख लेता है। तो राजयोग से हमें जीवन का और इस जगत का सही ज्ञान मिलता है। हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट हमें स्पष्ट हो जाते हैं, उसका सही ज्ञान हमें मिल जाता है। और जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, मन क्लीन होता है, शुद्ध होता है। जो मन पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, तेरी मेरी दुनिया भर की बीती हुई भविष्य की बातें सोच सोच के आज मन मैला बन गया है, वो मन स्वच्छ होने लगता है। हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। इसलिए हमारे में परख शक्ति आती है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मान लो एक तालाब है, पानी से भरा हुआ, वो पानी गंदा है और हिल रहा है, तो उस पानी में कोई भी चीज का प्रतिबिंब क्लियर कैच नहीं होगा। लेकिन वही पानी स्थिर है, स्वच्छ है, तो हर वस्तु का प्रतिबिंब पूरा क्लियर कैच होगा। अब तक हमारे मन की स्थिति क्या थी? बहुत छोटी छोटी बात में हम अपसेट हो जाते हैं। एक पाई पैसे की चीज के लिए, बात के लिए हम अपने वैल्यूएबल मन को डिस्टर्ब कर देते हैं और हमारा मन उन बातों के चिंतन में लगा हुआ है जो बातें, जो व्यक्ति, जो पदार्थ स्वयं परिवर्तनशील है। तो उनकी याद से, उनके चिंतन से मन कैसे स्थिर बनेगा? इसलिए कोई भी व्यक्ति के वाइब्रेशंस या कोई परिस्थिति के संकेत को हम कैच नहीं कर पाते, वरना ये बात साइंटिफिक है कि हर व्यक्ति के अपने वाइब्रेशन होते। हर परिस्थिति आने से पहले अपने पूर्व संकेत देती है। तो जैसे जैसे क्लीन माइंड होता है, क्लियर इंटेलेक्ट होता है, तो वो हम स्पष्ट कैच कर सकते हैं। इसलिए हम परख सकते हैं। परिणाम रूप हम धोखा नहीं खाएंगे, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इसलिए राजयोग से हमें परख शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी शक्ति है, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये दो शक्ति बेस के रूप में बताई है, वो है निर्णय शक्ति, पावर टू जज। परखने के बाद इम्पोर्टेंट है निर्णय लेना। कई बार हम परख भी लेते हैं, ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि राइट है तो वो ही मुझे करना है और रॉन्ग है तो नहीं ही करना है, वो फर्म डिसीजन हम नहीं ले पाते, इसलिए हम मुंझते रहते। जो समस्या, जो बात हमारे सामने है उसका निवारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि निर्णय नहीं करेंगे तो निवारण कहां से होगा, तो नेचुरली उसका एक टेंशन मन पर बना रहता है। तो आपने राजयोग के फर्स्ट लेसन में समझा है कि मन का कार्य है सोचना और बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। मन में अनेक सोच आते हैं, अनेक विकल्प आते हैं। कोई भी बात के लिए आपके सामने 10 ऑप्शन है, लेकिन कौन सा चूज करना है वो निर्णय बुद्धि लेती है। और योग से बुद्धि प्यूरिफाई होती है, एम्पावर होती है, डिविनाइज होती है। इसलिए हम यथार्थ और शीघ्र निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हम बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ते हैं, जो बुद्धि इधर उधर कहीं भी अटैच हो गई है, अब हम उस बुद्धि को परमात्मा से कनेक्ट करते। तो चित्र में तराजू बताया है, हम कोई चीज का वजन करने के लिए तराजू का उपयोग करते हैं। ये पदार्थ इतना किलो हुआ, वो डिसीजन हम कब लेते हैं, कब कर पाते, जब वो तराजू का कांटा स्थिर होता है। जब तक वो कांटा हिलता है तो हम कहते नहीं, अभी बराबर नहीं। तो हमारे सद्विवेक का कांटा जब स्थिर और अचल है तो आप राइट डिसीजन ले सकते। जब तक हमारा विवेक दूसरों से प्रभावित होता है, बदलता रहता है, तो हम राइट डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए गीता में योग की सर्वोच्च स्थिति बताई है, स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा मीन्स विवेक, विजडम। विवेक तो हम सभी में है, समय पर कभी कभी सही बातें हमारे निर्णय में आती है, लेकिन वो स्थाई नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि मान अपमान, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, निंदा स्तुति में जिसका विवेक स्थिर रहता है, अचल रहता है, वो है स्थित प्रज्ञ। तो जैसे जैसे हम अपने अविनाशी आत्मस्वरूप का चिंतन करते हैं, उस अविनाशी पिता को याद करते हैं तो उसकी याद से बुद्धि सत्य बनती है, शुद्ध बनती है। इसलिए भक्ति में भगवान से सद्बुद्धि मांगते हैं ना। जब किसी से भी कोई नहीं समझते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते कि अब तो भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ऐसे ही कहते हैं। सबको सदमति दे भगवान, कहते हैं ना, क्योंकि उसकी याद से बुद्धि सत्य बनती है, शुद्ध बनती है, शक्तिशाली बनती है, डिविनाइज बनती है। तो ये है निर्णय शक्ति और परख शक्ति। प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें अपने कार्य क्षेत्र में इसकी कितनी आवश्यकता है। आप अनुभव करेंगे, अब जो काम 4 घंटे में आप करते हैं वो आप 2 घंटे में कर सकेंगे, क्योंकि क्लैरिटी है। तीसरी शक्ति है समाने की शक्ति, सबको एकोमोडेट करने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, पावर टू अडॉप्ट। वैरायटी आत्माओं के साथ जीना है, भात भात के स्वभाव संस्कार है, न केवल कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि एक न मिले दूसरे से। हर एक का स्वभाव संस्कार अपना अपना है, हमें विभिन्न पर्सनालिटीज के साथ काम करना होता है, विभिन्न सिचुएशन में काम करना होता है। अगर हमारे में ये एडजस्टमेंट पावर नहीं है तो हम चल नहीं सकते हैं, हम ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अगर हम रिजिड रहे, अकड़ू रहेंगे तो चल नहीं सकेंगे। हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, स्थान अनुसार, कार्य अनुसार, साथियों के अनुसार, हमें सही मायने में भी एडजस्ट करना होता है। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो चित्र में बताया है कि एक समुद्र के अंदर अनेक नदियां समा जाती हैं। वो नदी बड़ी है या छोटी है, उसका पानी स्वच्छ है या गंदा है, वो नदी उत्तर से आ रही है या दक्षिण से आ रही, फोर्स से आ रही है या धीरे धीरे आ रही, सागर सबको समा लेता है। क्योंकि सागर में 2 विशेषता है, एक तो वो विशाल है और गहरा है। जहां संकुचितता है वहां हम एडजस्ट नहीं कर पाते, जहां संकीर्णता है धर्म की, जाति की, भाषा की, आयु की, ये दीवारें जहां हमने खड़ी की है वहां हम एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन राजयोग से आप सोल कॉन्शियस बनते हैं, देह के धर्म, जाति, भाषा, आयु, लिंग के भेद से ऊपर आत्मभान में स्थित होते हैं। तो जब सोल कॉन्शियस बनते हैं तो ये सारी लिमिट्स ब्रेक हो जाती है, आप में विशालता आती है, दिल की गहराई आती है, आप कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के साथ चल सकेंगे। जो हैं जैसे हैं उनको स्वीकार कर सकेंगे। ये एडजस्टमेंट पावर नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि मेरा ही घर ऐसा है, उनका देखो कितना अच्छा, मेरा ही पति ऐसा है, उनका देखो कितना अच्छा, मेरे बच्चे ही ऐसे हैं, उनके बच्चे देखो कितने अच्छे। और उनसे जाकर पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि हमारे वो है ना, वो ऐसे हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सांसारिक हो, सामाजिक हो, सेवा का हो, हर क्षेत्र में हमें एडजस्ट करना। इसलिए सोल कॉन्शियस बनना तो आप हम्बल बनेंगे। जहां हम्बलनेस है, नम्रता है, झुकना आता है, तो आप एडजस्ट कर सकते। हवा के तूफान जब आते हैं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मजबूत पेड़ गिर जाते क्योंकि वो अकड़ू होते, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो बैंड हो जाते हैं, इसलिए वो तूफान आगे निकल जाता है और फिर वो पौधे खड़े हो जाते हैं, सर्वाइव हो जाते हैं। आज हम एक दो की बात को समा नहीं सकते हैं, इसलिए तो फैलाते हैं, एक की बात दूसरे को करते, दूसरे की बात तीसरे को करते। आज गृहस्थ जीवन के आधे झगड़ों का कारण यही है ना कि हम समा नहीं सकते, क्योंकि हम उसे अपना नहीं समझते। हमारे अपने किसी की बात हो तो हम उसको फैलाते हैं, तब तो हम कैसे समा लेते। कोई उस बात को उखेड़ते हैं तो भी हम कहते हैं कि भाई फिर क्यों आप वो बात करते, क्योंकि हमें प्यार है, अपनापन है, इसलिए उनकी गलतियों को हम समा सकते हैं, फैलाते नहीं। तो जब सोल कॉन्शियस बनते हैं तो सारा विश्व हमारा है, सभी आत्माएं भगवान के बच्चे, हम सभी भाई भाई हैं। तो आपके दिल में उनको आप समा सकेंगे। चौथी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट शक्ति है। आज धीरे धीरे यही तो सहन शक्ति कम हो रही है। जो आपके बड़ों में थी वो आज आप में नहीं है, आप में जितनी सहन शक्ति है वो आज की जनरेशन में नहीं। और सहन शक्ति नहीं है इसलिए रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिबाउंड करते हैं। आप एक बात कहते हैं वो दो बात जवाब देते हैं आपको, आप ऐसा करते हैं वो चार गुना रिएक्ट करते, क्योंकि अंदर से आत्मा में शक्ति नहीं है जो टॉलरेट कर सके। तो टॉलरेंस, पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति मींस अंदर से शक्तिशाली बनना, इनर स्ट्रेंथ। हम अंदर से इतने शक्तिशाली हों जो कोई कैसा भी व्यवहार करे हम रिएक्ट नहीं करें, हम अच्छे से अच्छा रिटर्न करें। वो वही कर सकता है जिसमें सहन शक्ति। चित्र में बताया है कि हम वृक्ष को पत्थर मारते हैं, लेकिन वृक्ष भी हमें क्या देता है? फल देता है। प्रकृति में भी ये गुण है कि हम पत्थर मारते हैं वो हमें फल देते, हम उसे काटते हैं वो हमें छांव देते हैं। प्रकृति भी हमारे कैसे भी व्यवहार का अच्छा रिटर्न करती, और हम इंसान हैं जो रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमारे में वो शक्ति नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सहन वो ही कर सकता है जिसमें नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति हो। संसार में जितने भी महान बने हैं सहन शक्ति से महान बने, अपने अपने क्षेत्र में हर एक ने सहन किया। चाहे आप वैज्ञानिकों के लाइफ को देखो, गैलीलियो के जीवन में जब पहला सत्य उसने समाज के आगे रखा कि पृथ्वी गोल है, तो उसे जेल में बंद कर दिया गया। हम भक्तों के इतिहास को पढ़ते हैं कि भगवान के प्यार में मीराबाई ने, नरसिंह मेहता ने क्या नहीं सहन किया। धर्मों के इतिहास को देखते हैं, यीशु ख्रिस्त ने, हर स्थापकों ने क्या नहीं सहन किया। जो सहन करता है वो महान बनता है। तो हम याद रखें कि हम इस वर्ल्ड ड्रामा में एक्टर है, हमें एक्ट करना है न कि रिएक्ट करना है। हम एक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट करते रहते क्योंकि सहन शक्ति नहीं। आपके कार्य क्षेत्र में कहीं भी आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा ही फीडबैक हमें दे। कितना भी अच्छा करेंगे तो भी कोई निंदा करेगा, कोई ग्लानी करेगा। उस फीडबैक को हम सुन सके, स्वीकार कर सके, उसके लिए सहन शक्ति चाहिए। पांचवी शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर टू पैक अप। चित्र में बैग और बिस्तर दिखाया है। हम यात्रा पर निकलते हैं, जरूरी सामान लेकर निकलते हैं, आवश्यकता के अनुसार फैलाते हैं और उस विधि फैलाते हैं ताकि तुरंत समेट सके और आगे जा सके। आज हमने मन और बुद्धि के बिस्तर को इतना फैला दिया है कि अब हम समेट नहीं पाते। तब तो कहते हो ना कि मन एकाग्र नहीं होता है, फुल स्टॉप नहीं लगता है, बार बार सोचते हैं भाई हो गया ना, हो गया ना, अब क्या सोचना है, फिर सोच आता रहता है। समेटने की शक्ति नहीं, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है। कहते हैं ना, ये संसार मुसाफिर खाना है, जीवन यात्रा है, आत्मा मुसाफिर है। हर एक जानते हैं कि जो आया है सो जाएगा, जानते हो ना, और ये भी जानते हो कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो हम उस विधि से फैलाएं जो जब चाहे समेट सके। लेकिन इच्छाओं का विस्तार इतना है कि समेट नहीं पाते। एक पूरी करते हैं तो और इच्छा होती, एक मकान है तो दो मकान चाहिए, एक मोटर है तो और वैल्यूएबल और महंगी कार चाहिए। हमारी इच्छाएं हम सीमित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जीवन के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है। मैं यहां क्यों हूं, किस लिए आई हूं, मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है। जब वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है तो माइंड फोकस नहीं कर पाते हैं। आज मैंने ये सफेद पहन लिया है, मैं यहां हूं तो मुझे स्पष्ट हो कि मेरा ध्येय क्या है, मेरा कार्यक्षेत्र क्या है, मेरी सेवा क्या है। इसके अलावा इच्छाएं, इंटरेस्ट, वो वेस्ट है मेरे लिए, तो वो मुझे समेट लेने चाहिए। आज हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में यही तो कंप्लेन है कि व्यक्ति नौकरी ले लेते हैं, रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पर आ जाते हैं, पर अवेलेबल रहते नहीं है, क्योंकि नौकरी यहां है पर मेरा इंटरेस्ट दूसरी बातों में। इसलिए हम अपने ही धंधों में एंगेज रहते हैं। जहां हम हैं वहां हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते। पावर टू पैकअप मीन्स जब चाहे, जहां चाहे हम अवेलेबल हो, मेंटली भी मीन्स एवर रेडी। और अब आपने कल सृष्टि चक्र के लेसन से, विभिन्न लेसनों से अब स्पष्ट समझ लिया है कि अब ये विश्व नाटक का चक्र जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। अब हमें वापस घर जाना है, तो जो वेस्ट थॉट्स है, वेस्ट इंटरेस्ट है, उनको हमें समेटना। तो राजयोग में हम रोज क्या अभ्यास करते, वही तो अभ्यास करते हैं। और विचारों को समेट कर उस समय हम स्वचिंतन करते, परमात्मा चिंतन कर, कि बाकी सब चिंतन हम बाद में करेंगे, ये आधा घंटा मेरा स्वचिंतन के लिए। तो रोज हम जब ये अभ्यास करते हैं और सब कुछ समेट कर, पैकअप कर, अब स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, तो वो अभ्यास हमें मन को समेटने की, इच्छाओं को समेटने की, अपने मन के रसों को समेटने की शक्ति देता है। छठवीं शक्ति है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। जब चाहे विस्तार में जा सके, जब चाहे न्यारा हो सके, इसको कहते हैं पावर टू विड्रो। जब चाहे इन्वॉल्व हो जाए, जब चाहे डिटैच हो जाए। हम विस्तार में तो चले जाते हैं पर फिर निकल नहीं पाते हैं, न्यारा नहीं हो पाते। बात पूरी हो जाती है लेकिन बुद्धि बात को छोड़ती नहीं, इसलिए वो बात का प्रभाव मन पर बना रहता है। आज ऑफिस में कोई फायरिंग मिला, कोई बात बनी, ऑफिस से घर में आए ना, लेकिन फिर भी बुद्धि उस बात को नहीं छोड़ती है, इसलिए घर में आके हम गुस्सा कर देते। घर में हमारी आपस में कोई बात हुई, लेकिन उस बात से डिटैच होकर हम बच्चों से नहीं मिलते हैं, इसलिए बच्चों पर गुस्सा कर देते, क्योंकि हमें एक रोल से दूसरे रोल में जाते समय उस रोल से डिटैच होने की प्रैक्टिस नहीं, इसलिए वो रोल मिक्स होते रहते हैं। चित्र में बताया है कि एक कछुए में भी सेंस है, वो भी आवश्यकता है तो कर्म इंद्रियां बाहर निकलता है, जब कार्य पूरा हो जाता है तो वो भी कर्म इंद्रियों को समेट कर शांत बैठ जाता है। और हम इंसान हैं कि बात पूरी हो जाने के बाद भी बुद्धि से छोड़ते ही नहीं है, सोचते ही रहते। मेडिटेशन की पहली प्रैक्टिस ही है टू विड्रो, देह भान से न्यारा होना। हमारा पहला ही संकल्प यह है कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूं, और आप अनुभव करके देखिए, हमें सिर्फ देह भान से डिटैच होना है, अपने आप सब बातों में आप डिटैच हो सकेंगे, अपने आप न्यारा रह सकेंगे। अब तक हम ये सोचते रहे और ये मानते रहे कि हमें दुनिया से ही न्यारा होना पड़े तब मन शांत हो सकता है, हाँ? सब कुछ छोड़े, कहीं संसार से दूर जाएं तो मन लग सकता है, हाँ? लेकिन अनुभव हमें ये कहता है कि हमें दुनिया नहीं छोड़नी है, जिम्मेवारियां नहीं छोड़नी है, देहभान से न्यारा होना है बस। कितनी भी जिम्मेवारी संभालेंगे आप उसी क्षण न्यारे हो सकेंगे। तो ये बैलेंस चाहिए जीवन में, न्यारा और प्यारा। हम तो प्यारे हो जाते हैं तो अटैच हो जाते, न्यारे हो जाते हैं तो रूठे हुए लगते, जैसे किनारा कर दिया हो हमने। नहीं, अंदर की अटैचमेंट से डिटैच होना है, सबसे मिलना है, सबसे प्यार से चलना है, लेकिन अंदर से आत्मा न्यारी हो। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे पूरा इन्वॉल्व होना है ना, अपना समझकर जवाबदारी से काम करना, लेकिन कार्य पूरा हुआ समेट के अपने स्वरूप में स्थित होना है। सहयोग की शक्ति, ये सातवीं शक्ति है, पावर टू कोऑपरेट। सहयोग की शक्ति, हमें एक दो को सहयोग देना है, सर्व के सहयोग से बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपस में हमारा सहयोग नहीं है तो काम करना मुश्किल हो जाता है। आज मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या कंप्लेन करते हैं कि टीम स्पिरिट नहीं, लोग मिलके काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपस में सहयोग की भावना नहीं। तो अगर मुझे, हम हर एक चाहते हैं कि आज मैं लीडर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं मैनेजर हूं, तो जो मेरे साथी है वो मुझे कोऑपरेट करे, चाहते हैं ना आप, लेकिन मुझे सहयोग चाहिए तो सहयोग प्राप्त करने की विधि क्या है? मुझे सहयोग देना है। सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, मान देंगे तो मान मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। इस संसार कर्म क्षेत्र का नियम है, जो आप देंगे वो ही आपको मिलेगा। चित्र में बताया है कि सर्व के सहयोग से गोवर्धन पर्वत को उठाया गया। शास्त्रों में ये कहानी है ना कि सब गोप गोपियों ने अपनी अंगुली का सहयोग दिया तो गोवर्धन पर्वत उठा सके और गोकुल वृंदावन को उस बारिश से बचा सके। तो कोई मिट्टी पत्थर के पहाड़ को उठाने की बात नहीं है, लेकिन ये कलयुगी समस्याओं के पहाड़ को हटाने की बात है। जो डिफिकल्ट वर्क है, टास्क है, वो कंप्लीट अगर हमें करना है तो सर्व का सहयोग चाहिए। तो कितना भी डिफिकल्ट काम सहज हो जाएगा, एंजॉयबल हो जाएगा, लेकिन हम सहयोग तब दे सकेंगे जब हमारा आपस में प्यार हो। जहां प्यार है वहां आप कॉपरेट करते, जहां प्यार नहीं है वहां आप अलग हो जाते हैं। इससे स्नेह है तो सहयोग देते हैं, सहयोग है तो यूनिटी बनती, यूनिटी है तो सक्सेस होता है। और आठवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। जीवन में अचानक बातें आती है, अचानक परिस्थिति आती है। चित्र में बताया है किसी की डेथ हो जाती है, कोई भयानक बीमारी लग जाती है इंसान को, अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। उस समय अगर हमारे में ये फेस करने की शक्ति नहीं है, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं है, तो व्यक्ति टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं लोग, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो हिम्मत हार जाते हैं। अंदर से आत्मस्थिति इतनी शक्तिशाली नहीं है जो परिस्थिति को फेस कर सके, इसलिए लोग जवाबदारी छोड़ देते हैं, मैं नहीं कर सकता। लोग सब कॉपरेट नहीं करते हैं, मैं नहीं काम कर सकता। अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं, अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं। लेकिन योग से हमारे में ये पावर आता है, आत्मा अंदर से मजबूत बन जाती है, क्योंकि परमात्मा से योग लगाना माना उस ऑलमाइटी को अपना साथी बना लेना। जब वो ऑलमाइटी मेरे से कंबाइंड है तो मैं सबको अपना साथी बना सकती हूं। आपको अंदर से एक मजबूत आधार अनुभव होगा कि मैं अकेली नहीं हूं, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। तो हमारी आत्मस्थिति स्थिति स्वस्थिति शक्तिशाली बनती है तो परिस्थिति को बदल सकते हैं, परिस्थिति को पार कर सकते हैं। जबकि हम जानते भी हैं कि परिस्थिति परिवर्तनशील है, जानते हैं ना कि आज जो बात मेरे सामने आई है वो आज नहीं कल बदल ही जाएगी। कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रहती है। फिर हम अपनी स्वस्थिति को क्यों हिला देते, क्यों घबरा जाते? क्योंकि शक्ति नहीं। जैसे जैसे आपका योग नेचुरल हो जाएगा, आप हर क्षण हर स्थान पर हर कार्य में हम उनको सदा साथ अनुभव कर सकते, याद करते हैं और शक्ति मिलती। मांगना थोड़ी है, हमारे में करेज आ जाती है और इस शक्ति से पर फिर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते। तो ये है अष्ट शक्तियां, अष्ट आत्म शक्तियां, जिससे हम जीवन की यही बातें जो आज हमें मुश्किल लग रही, जीवन बोझ लग रहा है, गृहस्थी एक जंजाल लग रहा है, वो ही बातें सहज पार कर सके। आप बीमार है, कमजोर है, तो यहां से राज ऋषि भी चल के जाना मुश्किल लगता है, और वहीं आप पावरफुल है तो आप यहां से 2 किलोमीटर दूर भी चल के चले जाएंगे। ऐसे ही आत्मा की बात है कि अब आत्मा की स्थिति डेलिकेट नाजुक है, कमजोर है, इसलिए छोटी मोटी बात में बस दुखी होते रहते हैं, मायूस होते रहते हैं। फलाना ऐसा बोल के गए, बस बोलने वाला बोल के चला गया और हम सारा दिन दुखी होते रहते, क्योंकि शक्ति नहीं है ना, ना अंडरस्टैंड करते हैं, ना टॉलरेट कर पाते हैं, ना एडजस्ट कर पाते हैं, ना फेस कर पाते हैं। तो जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, अपने में शक्ति आती जाएगी, बाबा को याद करते जाएंगे, आत्मा इतनी सेंसिबल एंड पावरफुल बनती जाएगी कि हम इन बातों को सहज पार कर सके। हम इस दुनिया में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रह सकेंगे। हम अपने में दिव्य गुणों को, सद्गुणों को स्थायी रूप से धारण कर सकेंगे। स्थायी रूप से मैं इसलिए कह रही हूं, समझो मेरे में प्यार का गुण अब कहीं पर वो अप्लाई हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। आपने कई बार देखा होगा, आपका अपना अनुभव, कि घर में मान लो पति पत्नी बैठे हैं, कोई कारण से आपस में क्लैश हो रहा है, टकराव हो रहा है, बहस हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं, उसी क्षण आप दोनों क्या कहते, आइए आइए, हाँ पधारी, प्यार से वेलकम करते। वो प्यार कहां से आ गए, अभी तो झगड़ रहे थे। वो मेहमान के प्रति जो प्यार अप्लाई हुआ वो आपस में भी तो हो सकता था। तो वैल्यूज सद्गुण सदा मेरे में रहे, चाहे कोई घृणा करे, चाहे कोई प्यार करे, कोई सहयोग दे या विरोध करे, मेरा प्यार क्यों खत्म होना चाहिए? तो वो आत्मा जब शक्तिशाली बनती है तो वो सद्गुण भी हम परमानेंट धारण कर सकते। और वो कमजोरियां जिसको विकार हम कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, भय, ये जो वीकनेसेस है वो अपने आप खत्म हो जाती, हमारा व्यवहार श्रेष्ठ बन जाता है, शुद्ध बन जाता है, हम स्वयं के लिए, अन्य के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी बन जाते हैं। हमें इस जीवन में मुक्ति का अनुभव होता है। इसी की यादगार भक्ति में हम देवियों को अष्ट भुजाधारी दिखाते हैं, है ना, दुर्गा, अम्बा, सब देवियों को देखो अष्ट भुजाधारी दिखाते, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं और हम कहते हैं कि देवियों ने असुरों को मारा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कोई मारने की बात नहीं है, हिंसा करने की बात नहीं है, कोई आठ हाथ वाली देवी नहीं हो सकती है, कोई स्थूल शस्त्र लेने की बात नहीं है, किसी को मारने की, हिंसा करने की बात नहीं है। लेकिन जब शिव से हम योग लगाते हैं तो शिव की कल्याणमयी शक्तियां हमारे में आती है और हम आत्माएं शिव शक्तियां बन जाती है और हम इन ज्ञान, गुण और शक्तियों के शस्त्र से अपनी आसुरियता और अन्य की आसुरियता खत्म करते हैं। जैसे गांधी जी ने क्या कहा था कि पापी को नहीं मारना है, पाप को मारना है, असुर को नहीं मारना है, आसुरी संस्कारों को बदलना है। इसलिए यहां हम कहते हैं कि अब हमें ही देवियां, देवताएं, शक्तियां हमें बदलना है, हमें दुर्गा, अम्बा, सरस्वती, श्री राम, कृष्ण, नारायण हमें बनना है। और ऐसा बनने के लिए याद उस परमात्मा शिव को करना है। तो हम अपने गलत संस्कार आदतों को खत्म कर सकेंगे और मेरे खत्म होंगे तो मैं ऑटोमेटिक दूसरों का भी कर सकूंगी और हम समाज को अच्छा बना सकेंगे। तो अब आज आपको जाना है ना वापस अपने अपने क्षेत्र में, हाँ, आज कल, हाँ, तो अब आप समेटने लगे होंगे, है ना, अब लंगर यहां से उठ गया है, उसकी कृपा है ही, वो तो है ही कृपालु, दयालु, वो कोई डिस्टेंस नहीं रखता है कि इसके ऊपर करो, इसके ऊपर नहीं करो, लेकिन हमारे कर्म है जो उस कृपा को खींच सके। जोरदार बारिश हो रही है पर लोटा उल्टा रखा है तो कहां भरेगा, उसकी कृपा तो हो ही रही है ना, पर मेरी प्रीत उनसे हो, वो मदद कर रहा हो लेकिन मैं हिम्मत भी तो करूं। इसलिए अब इन शक्तियों को साथ ले जाना है, बाबा की याद को लेके जाना है, तो उस दुनिया में रहते भी हम ऐसा बन सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भी हमें यहीं बैठ जाना है, ऐसा कमजोर थोड़ी बनना है। हाँ तो ये क्या है, जपना रटना वो नेचुरल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि रटना नहीं है, जपना नहीं है, स्मृति याद करना, नेचुरल रिमेम्बरेंस। अब जिससे आपको प्यार है वो कितने याद आते, जपना थोड़ी पड़ता है ना, हम भूल भी नहीं सकते, तो वो नेचुरल कर। ओम शांति।